रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।
आज है 12 मार्च, दिन शुक्रवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें शादाब हसन खान का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। लोकतंत्र पर काम करने वाली स्वीडिश संस्था का दावा, चुनावी तानाशाही में तब्दील हो रहा भारतीय लोकतंत्र। म्यांमार में यूएन के विशेष दूत बोले, अब तक 70 प्रदर्शनकारी मारे गए। क्वाड समूह का पहला शिखर सम्मेलन आज, चीन को घेरने की बनाएंगे रणनीति। रहेंगे दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहे बुलेटिन में शादाब हसन खान के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। स्वीडन के एक संस्थान वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वीडेम ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनाव आधारित तानाशाही में बदल गया है। संस्थान के मुताबिक भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से मीडिया, अकादमिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी की आज़ादी पर लगाए गए अंकुश और असहमतियों को दबाने के सरकार के रवैये से जुड़े आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। एक रिपोर्ट सुनते हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी से।
दुनिया भर में अलग अलग तरह की लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों का अध्ययन करने वाले स्वीडन बेस्ड एक संस्थान वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वीडेम ने अपने एक हालिया एनालिटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनाव आधारित तानाशाही में बदल गया है। इस संस्थान ने बुधवार को स्वीडन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट राइडबर्ग की मौजूदगी में अपनी इस रिपोर्ट को रिलीज किया, जिसमें कई किस्म के पैरामीटर्स के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र के हालात का अध्ययन किया गया है। वीडेम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ने की प्रक्रिया मोटे तौर पर पिछले 10 सालों में कई देशों में आए एक खास तरह के पैटर्न की तीसरी लहर के क्रम में ही है, जहां धीरे धीरे पहले मीडिया, अकादमिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी की आज़ादी को छीना जाता है और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला जाता है। पिछले साल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने लोकतंत्र का दर्जा खोने की कगार पर है, लेकिन इस बार संस्थान के अनुसार उसने और बेहतर आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर स्पष्ट तौर पर यह पाया है कि भारत 2019 के बाद से एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनाव आधारित तानाशाही में तब्दील हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में मोदी सरकार ने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से 7,000 से अधिक लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं और इनमें से अधिकतर लोग सत्तारूढ़ पार्टी के आलोचक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस लिहाज से अब पाकिस्तान की तरह अधिनायकवादी हो गया है और यहाँ हालात उसके दो अन्य पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरे हो गए हैं। वीडेम ने कहा है कि भारत उन देशों में से एक है जो कि तानाशाही की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं और मौजूदा समय में दुनिया की आबादी का तकरीबन 68% हिस्सा अधिनायकवादी सत्ताओं के मातहत जीवन जी रहा है। इसके चलते इस साल की रिपोर्ट को संस्थान ने ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल यानी वायरल हो रहा अधिनायकवाद नाम दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले 10 सालों में लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़ रहे देशों की तादाद आधा घटकर महज 16 तक आ गई है और कुल वैश्विक जनसंख्या की 4% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है। इस रिपोर्ट में भारत के साथ ही G20 देशों में शुमार ब्राजील और तुर्की जैसे देशों को भी 10 सबसे बड़े ऐसे देशों में शामिल किया गया है जहां लोकतंत्र का तेजी से ह्रास हुआ है। हालांकि भारत सरकार इस तरह की रिपोर्टों और वैश्विक स्तर पर अपनी आलोचना को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा मानती आई है। बीते दिनों में भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मशहूर गायिका रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की भारत सरकार की आलोचनाओं को सरकार ने भारत की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा बताया था। पिछले दिनों ब्रिटिश संसद में भारत के किसान आंदोलन और भारत सरकार के रवैये पर हुई चर्चा के बाद भारत ने इसे उसके आंतरिक मामलों पर विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई थी। साथ ही इस सिलसिले में ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब भी किया गया था।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं शादाब हसन खान। इस बीच कोविड-19 के टीके के ईजाद होने के दुनिया भर में असमानता की खाई जिस तरह और उभर कर सामने आई है उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। इसी क्रम में इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग के कमीशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का साझे तौर पर नेतृत्व कर रहे नोबल पुरस्कार से नवाजे गए अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिलगीज और माइकल स्पेंस ने आवाज़ उठाई है। कमीशन की एक नई अंतरिम रिपोर्ट में दोनों अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि गरीब देशों को कोरोना वायरस महामारी के गहरे प्रभाव से उभारने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने सुझाव दिया है कि वैक्सीन के वितरण में समानता, कर्ज माफी और नकदी की कमी से जूझ रहे देशों के लिए राजकोषीय संसाधनों को बढ़ाने के उपायों को अपनाना होगा। स्पेंस ने इस रिपोर्ट में कहा है, असाधारण समय में असाधारण कदम उठाने की ज़रूरत होती है। अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो विकासशील देशों की विकास की उपलब्धियाँ अपने ट्रैक से उतरकर सालों और हो सकता है कि दशकों पीछे चली जाएं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के आपस में एक दूसरे से जुड़ाव वाले चरित्र को उजागर करते हुए इस रिपोर्ट में अमीर देशों से अपील की गई है कि वे बौद्धिक संपदा के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को कोविड-19 से जुड़े उपचार, जाँचों और वैक्सीन उत्पादन से जुड़े उत्पादों के संबंध में या तो कुछ वक्त के लिए निरस्त कर दें या फिर उनमें सुधार करें। रिपोर्ट की वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर स्टिलगीज ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं और जो रवैया अभी अपनाया जा रहा है ऐसा ही चलता रहा तो कई विकासशील देशों तक वैक्सीन पहुंचने में कई वर्ष लग जाएंगे और कोरोना वायरस पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक कि दुनिया भर में हर जगह इसे थाम न लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र और WHO समेत कई वैश्विक संस्थाएं भी इस बात को बार बार दोहरा रही हैं। वहीं म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने वहां की सेना को प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी फटकार लगाई है। म्यांमार में मानवाधिकारों पर निगरानी रख रहे विशेष दूत थॉमस एंड्रयूज ने बताया है कि जब से सेना ने तख्तापलट किया है तब से 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में सेना की ओर से इंसानियत के खिलाफ किए अपराधों का हवाला दिया है जिनमें हत्या, उत्पीड़न और यातना देने जैसे गंभीर मामले हैं। थॉमस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस भयावह सत्य के बारे में बताते हुए गुरुवार को कहा है कि म्यांमार की कमान हत्यारे और गैर कानूनी सैन्य प्रशासन के हाथों में है। थॉमस के मुताबिक मारे गए लोगों में आधे से ज्यादा तो 25 साल से कम उम्र के हैं। साथ ही तख्ता पलट के बाद से 2000 से ज्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां जारी दमन के वीडियो काफी तादाद में मौजूद हैं। वहीं म्यांमार के सैन्य शासकों ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की पर सरकार में रहते हुए अवैध तरीके से कुछ गोल्ड और 6 लाख अमेरिकी डॉलर स्वीकार करने का आरोप लगाया है। म्यांमार की सेना की ओर से सू की पर लगाया गया यह अब तक का सबसे गंभीर आरोप है। सेना ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने इस सूचना की पुष्टि की है कि सू की ने ये पैसे स्वीकार किए थे। गुरुवार को कुछ सैन्य शासकों ने इस बारे में एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, हालांकि इन आरोपों के साथ किसी तरह का सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है। इसके साथ परिषद ने सेना से संयम बरतने का आह्वान किया है। संस्था ने सर्वसम्मति से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण और हिरासत में लिए गए नेताओं को तत्काल रिहा करने की बात दोहराई। दूसरी तरफ ब्रिटेन म्यांमार की सेना के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को तैयार है। यह जानकारी ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि म्यांमार की सेना के कमांडर इन चीफ के परिवार और व्यापार हितों को लक्षित करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का स्वागत है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन अतिरिक्त प्रतिबंधों को लगाने पर विचार कर रहा है। हम स्पष्ट हैं कि शासन को शक्ति के दुरुपयोग और मानव अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 महामारी से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए $1.9 trillion के आर्थिक राहत बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब इसने कानून की शक्ल ले ली है। इस कानून के तहत बेरोजगारों को $1400 तक की मदद दी जाएगी। साथ ही चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का भी प्रावधान है, जिससे कि महामारी के दुष्प्रभावों से तबाह हुए करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारा जा सकेगा। बाइडेन ने कहा कि इस राहत पैकेज के जरिए निढाल हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा स्पेंडिंग बिल है, जो कांग्रेस में बिना किसी रिपब्लिकन सांसद के समर्थन के ही पास हो गया। इसे बाइडेन प्रशासन के लिए बड़ी संसदीय जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब रुख अगली खबर का। अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेता शुक्रवार को पहले क्वाड सम्मेलन में वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा होगी। इस क्षेत्र में रणनीतिक और सैन्य साझा सहयोग के एजेंडे और कोरोना महामारी से निपटने में चारों देशों की भूमिका पर बातचीत होगी। क्वाड समिट में भारत की वैक्सीन को प्रमोट करने के फंड का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। चारों सदस्य देश चीन से अलग एक वैश्विक सप्लाई चेन सिस्टम बनाने पर भी बात करेंगे। इसे जापान आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया की मदद से चीन पर से निर्भरता को कम किया जा सके। इस बैठक में भारत से आसियान देशों के बीच ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि चीन के नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को करारा जवाब दिया जा सके। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संयुक्त फंडिंग पर भी विचार हो सकता है। अब रुख करते हैं मध्य पूर्व का, जहां इसराइल ने 5 फलिस्तीनी बच्चों को कई घंटों तक कैद करके रखा। ये बच्चे गुरुवार को हवात माउन में अवैध तरीके से बसाई गई यहूदी बस्तियों की तरफ जंगली सब्जियां तोड़ते हुए चले गए थे। वहां एक आउटपोस्ट के पास इन बच्चों की यहूदी बाशिंदों से बहस हो गई, जिसके बाद हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों ने फलस्तीनी बच्चों को घसीटा और एक एकांत जगह पर बंधक बनाकर रखा। इसके बारे में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक इजरायली समूह बतसेलेम ने जानकारी दी है। उसने एक वीडियो जारी किया, जिसमें हेब्रॉन हिल्स के पास इजरायली सैनिक उन मासूमों को पशुओं की तरह घसीट कर ले जाते देखे जा सकते हैं। यह आउटपोस्ट मसाफिर याता के बिल्कुल नज़दीक है, जहां फलस्तीनियों के छोटे गांव हैं। इसराइल के सेटलर्स और सैनिक अक्सर इस इलाके में फलस्तीनियों पर हमला करते रहते हैं। अब चलते चलते एक और खबर पर नज़र। अमेरिका में हैकरों के ग्रुप के सिलिकॉन वैली में स्थित स्टार्टअप वेरकाडा के विशाल सिक्योरिटी कैमरा डेटा को हैक करने का मामला सामने आया है। इस हैकिंग की वजह से अस्पतालों, कंपनियों, पुलिस विभाग, जेल और स्कूलों में लगाए गए 1.5 लाख सिक्योरिटी कैमरा की लाइव फीड तक हैकरों की पहुंच हो गई। जिन कंपनियों के कैमरा डेटा लीक हुए हैं, उनमें कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर क्लाउडफ्लेयर भी शामिल हैं। यही नहीं, हैकरों की महिलाओं के अस्पतालों के अंदर तस्वीरों और खुद वेरकाडा के कार्यालयों के CCTV फुटेज तक पहुंच हो गई। कई कैमरे चेहरे को पहचानने की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इनका भी डेटा हैकरों के हाथ लगा है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए शायद आपको दीजिए अनुमति, कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।